समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोल्ड चैनल और ये है न्यूज मैगजीन आज सवेरे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज सवेरे के एक नए अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you our daily news magazine program on Savere, wherein we have the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 9th of February. So let's begin with the headlines, Devendra.
जी, भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराकर 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। प्रमुख विजेताओं में नई दिल्ली से भाजपा के प्रवेश वर्मा, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, करावल नगर से कपिल मिश्रा, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, बिजवासन से कैलाश गहलोत, ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय, मोतीनगर से हरीश खुराना, शकुरबस्ती से करनैल सिंह और कस्तूरबा नगर से नीरज बैसोया शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक शामिल हैं। पार्टी के विजेता उम्मीदवारों में कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी, सदर बाजार से सोमदत्त, बाबरपुर से गोपाल राय, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, तिलकनगर सीट से जरनैल सिंह, बल्ली मारान से इमरान हुसैन और तुगलकाबाद से सही राम शामिल हैं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित, भाजपा के रमेश बिधूड़ी और राजकुमार आनंद को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है।
Prime Minister Narendra Modi said that Delhi will get world-class urban infrastructure now. Addressing BJP workers at party headquarters in New Delhi yesterday, Mr. Modi emphasized that the NDA means good governance and development. He asserted that the youth born in the 21st century will now see BJP's good governance in Delhi for the first time. The Prime Minister said that the Delhi Assembly poll results are indicative of the trust the country has in BJP's double-engine government.
दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा।
Hitting out at the Aam Aadmi Party, the Prime Minister claimed that the anti-graft party turned out to be corrupt. Mr. Modi thanked Delhiites for reposing their trust on the party to take the national capital to newer heights.
रक्षा मंत्रालय ने कल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की 28 ईओएन 51 प्रणालियों की खरीद की जाएगी। इस पर 642 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ईओएन 51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है। इस अनुबंध से 3 वर्ष की अवधि में रोजगार के अवसर सृजित करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said that the first World Audio Visual Entertainment Summit Waves 2025 is leveling up to make India the global content hub. In a social media post yesterday, Mr. Vaishnav said India is laying the foundation for becoming the creative powerhouse of the world. He added that the Waves Summit will bring together the world's top media CEOs, biggest entertainment icons and creative minds from across the globe.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के लिए कल नई दिल्ली में केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्यनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में मंत्रीगण, राज्य के मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास मंत्रालयों तथा नीति आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
Paris is set to become the global hub for AI governance as world leaders, industry pioneers and researchers gather for the two-day AI Action Summit 2025 starting tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will depart for Paris tomorrow to co-chair the summit alongside French President Emmanuel Macron. The event aims to shape global AI policies, ensuring innovations align with ethical responsibility. More from our correspondent.
At the Grand Palais in Paris, preparations are in full swing for a crucial global dialogue on AI. Representatives from over 100 countries, along with top researchers, business leaders and civil society members, will discuss AI's impact on governance, economy and fundamental rights. Building on previous AI summits in the UK and South Korea, this event seeks to establish global AI standards and promote responsible AI development. With AI transforming industries worldwide, leaders are focused on balancing innovation with ethical responsibility. As co-chair, India will play a pivotal role emphasizing ethical AI development, accessibility, and innovation. As AI continues to reshape the world, this summit is expected to lay the foundation for a more accountable and inclusive AI future. Rajadurai, Akashwani News, Paris.
बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने रूस के पावर ग्रिड से आ रही बिजली के कनेक्शन हटा दिए हैं। इसे यूरोपीय संघ के अनुरूप चलने और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। इससे रूस के साथ इन देशों के तेल और गैस संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ये तीनों देश फिनलैंड, स्वीडन और पोलैंड के ग्रिड से बिजली प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर लिथुआनिया में आयोजित एक कार्यक्रम में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और पोलैंड तथा तीनों बाल्टिक देशों के राष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं।
Lebanon has formed its first full-fledged government since 2022, ending a prolonged deadlock, with Nawaf Salam assuming the role of Prime Minister. President Joseph Aoun confirmed in a statement that he accepted the resignation of the previous caretaker government and signed a decree appointing Prime Minister Salam's new administration.
मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों, सिक्किम और ओडिशा में कई जगहों पर कल तक सुबह के समय घना कोहरा छाने का अनुमान है। इस महीने की 11 तारीख को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना भी है।
The 38th National Games currently underway in Uttarakhand is delivering thrilling moments as athletes from across the country showcase their exceptional performances. Various competitions in Haldwani, Dehradun and other locations are witnessing remarkable displays of skill. Here's a detailed report.
In the modern pentathlon laser run event, host state Uttarakhand's athletes put on a stellar show, clinching 5 gold medals in the 10,000-meter race held in Dehradun. Athletes from across the country displayed their endurance and skill. Himachal Pradesh's Savan Barwal secured the gold medal in the men's category, proving his excellence, while Maharashtra's Sanjeevni Jadhav dominated the women's race to claim gold. Several other athletic events also saw intense competition in the women's discus throw 1 kg. Haryana's Seema emerged victorious with gold medal, while in the men's discus throw 2 kg, Gagandeep Singh from services clinched the top spot. Tamil Nadu's athletes dominated the women's pole vault event, securing both gold and silver medals. Uttar Pradesh Sahanawaz showcased his talent by winning gold medal in the men's long jump. In the men's 1500-meter race, saw services Yunus Shah claim the gold medal, while in the women's category, Delhi's Chandana secured the first place. In the highly competitive 100-meter sprint, Odisha's Animesh sprinted to gold in the men's category, while Maharashtra's Sudeshna Shivakar took the top honor in the women's event. Taekwondo matches were equally thrilling. With intense battle in the Pomasay event, Arunachal Pradesh female athletes dominated, securing the gold medal. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
In Mumbai Open Tennis Tournament, the Indo-Dutch duo of Prarthana Tombare and Ariane Hartono will take on the Russian pair of Amina Anshba and Alina Pridankina in the women's doubles final today. The match is scheduled to start at 5 p.m. This will be the second consecutive year that Tombare and Hartono have reached the final, having fallen short in the last year's title match. In the women's singles event, India's 15-year-old Maya Rajeshwaran's remarkable run came to an end in the semifinals yesterday.
जारी महाकुंभ में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 12,000 से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों को निशुल्क सहायता उपलब्ध कराकर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पवेलियन स्थापित किया है जहां सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रति केंद्र सरकार की पहलों को प्रदर्शित किया गया है। और बाकी खेल खबरें महाकुंभ से हमारे संवाददाता की।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के महाप्रबंधक एसके त्रिपाठी ने बताया कि मेले में कई स्थानों पर विशेष शिविर स्थापित किए गए हैं जहां लोगों को व्हीलचेयर, छड़ी, श्रवण यंत्र और ब्रेल किट जैसे सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं।
अभी तक महाकुंभ में 12,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कुछ लाभार्थियों ने बताया कि यह सहायक उपकरण उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगा और वे आसानी से रोजमर्रा के काम कर सकेंगे।
कि हमको छड़ी मिलनी है जिससे हमें चलने में आसानी होगी।
मैं वृंदावन पांडे, यहाँ एक छड़ी मिली है, एक साइकिल मिली है, कमर के लिए पट्टा मिला है, इससे जो है हमें लाभ मिलेगा।
यह पहल सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है और इससे महाकुंभ मेले में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ में अनीता आनंद हैं और हम आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं महानगरों से जुड़ी खबरें। तो आइए चलते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु की खबरों के लिए अनीता के पास।
The Office of Protector of Immigrants Chennai organized a walkathon for safe immigration at Elliot's Beach yesterday, Tamil Nadu, Pathu Ponga, where the POE office will educate citizens about safe and legal immigration practices and the risks of unauthorized overseas job placements. Special guest Dr. Sandeep Mittal, ADGP Cybercrime, and Mr. Surinder Bhagat, Protector General of Immigrants, addressed the gathering and flagged off the walkathon to report illegal recruitment or cyber slavery recruitment activities. Call POE Chennai office at 90421492. For more information on licensed agents and advisories, visit www.emigrate.gov.in. About 400 people participated in the walkathon. The event saw performances by State Police Band, DGP Office Headquarters and Nukkad Natakam, performance on safe immigration by Ozuvan Kalai Kuzu members. Chennai Airport has a dedicated mobile phone application developed by Airport Authority of India. The app offers real-time flight status, navigation to facilities and other travel-related information. The beta version is available for download and the app provides detailed guidance and updates, eliminating the need for assistance. Developed by Airport Authority of India, the app can serve as a one-stop guide to get all travel-related queries answered. Flyers need not depend on the airlines to check their flight status. Non-frequent flyers can check the arrival and departure guide and baggage rules on the app. Eateries, shops, check-in counters if the Bluetooth on the phone is switched on. Union Minister of State for Railways V. Somanna reviewed the ongoing railway projects in Tumkuru yesterday. The senior railway officials and state government officials were present at the meeting. He sought the status on road under bridge projects at the Rampura Gate, Madena Halli Gate, Adone Gere, and road over bridges. He directed the contractors to complete the projects in time to alleviate traffic congestion and improve local mobility. The minister discussed the progress of Tumkur-Raidurg new line project, addressing the media persons later. V. Somanna informed that the electrification of the rail network in the state will be accomplished this year, saying that 10,000 kilometers of railway tracks across the country will be equipped with Kavach anti-collision devices as announced in the budget. The minister said that the state will also benefit from this as 1,500 kilometers of railway line will have Kavach. Karnataka was sanctioned 7,564 crore rupees in the railway budget. As part of its month-long awareness programs on cancer, Basav Tarakam, Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, BIACHNRI, in Hyderabad, organized a cancer awareness walkathon yesterday. The event was flagged off by Hyderabad Commissioner of Police, C.V. Anand. Addressing the gathering, Anand lauded its remarkable growth over the past 25 years in both size and service quality. Despite ongoing awareness efforts by various stakeholders, the City Police Commissioner expressed concern over the rising prevalence of cancer and attributed it mainly to widespread pollution. He urged people to remain vigilant and adopt preventive measures. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Devendra.
Ji. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों से ऊर्जा और प्रेरणा के लिए पुस्तकों की ओर रुख करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 में दो पुस्तकों का विमोचन करते हुए श्री बिरला ने कहा कि किताबें व्यक्तिगत और सामाजिक विकास दोनों में सच्ची मार्गदर्शक शक्ति हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम युवा मेंटरशिप प्रोग्राम द्वितीय के अंतर्गत विश्व पुस्तक मेले में 41 पुस्तकों का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य मेंटरशिप के माध्यम से युवा साहित्यिक प्रतिभाओं को विकसित करना है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कार्यक्रम में शामिल युवा लेखकों को बधाई दी और मेले को ज्ञान का कुंभ बताया। उन्होंने बौद्धिक विमर्श को आकार देने में युवा लेखकों के महत्व पर बल दिया और इस वर्ष के विषय लोकतंत्र पर भी प्रकाश डाला। 1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित ये मेला दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। इस वर्ष मेले में 50 से अधिक देशों के 2,000 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। 9 दिवसीय पुस्तक मेला आज संपन्न हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के मद्देनजर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GSD ने एक नोटिस जारी कर अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। नोटिस में कहा गया है कि GSD की अनुमति के बिना दिल्ली सचिवालय परिसर से कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर या अन्य सामग्री बाहर ले जाने पर प्रतिबंध है। नोटिस में आगे निर्देश दिया गया है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों, कार्यालयों के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारियों के उनके अनुभाग और शाखाओं के तहत अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। मुंबई का रुख करें। महाराष्ट्र में वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत पुराने और अनुपयोगी वाहनों के निपटान के लिए 6 पंजीकृत सुविधा केंद्रों को मंजूरी दी गई है। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि इन पंजीकृत केंद्रों पर अपने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को नया वाहन खरीदते समय कुल कर में 10% की छूट मिलेगी। इस उपाय का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, ईंधन दक्षता में सुधार करना और रखरखाव की लागत कम करना तथा पुराने वाहनों को नए से बदलकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। कोलकाता में 48वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आज संपन्न हो जाएगा। इस वर्ष की थीम देश जर्मनी है। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकार की ओर से मेले में सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए और अतिरिक्त बसों तथा मेट्रो सेवाओं को भी संचालित किया जा रहा है। आज आखिरी दिन पुस्तक मेले में अधिक से अधिक लोगों के आने की संभावना है।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, और आज सवेरे में अब बात करते हैं मौसम की। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल। आज सुबह के समय दिल्ली में हल्की ठंड बनी रही ठंडी हवाओं के कारण। दोपहर में धूप रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री के ऊपर जा सकता है और न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, तापमान 22 और 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं कोलकाता में हल्का कोहरा सुबह के समय छाया रहा, दिन में आसमान साफ हो सकता है और तापमान 17 सुबह के समय, दिन में 28 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। अनिता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा?
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग एंड मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड अ पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have mist during early morning. The minimum temperature was 16 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
जी और मौसम के बाद अब बात इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की. आज 9 फरवरी 2025 है. आज ही के दिन वर्ष 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने अली नगर संधि के जरिए कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, से सिराजुद्दौला से लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके में शामिल कर लिया था.
द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिगैन ऑन 9th फरवरी इन द ईयर 1951. On the same day, that is in 1962, Jamaica signed the documents to become an independent country. The country formally gained full independence from United Kingdom on 6th of August 1962. And on the same day, that is 9th of February 1667, the Truce of Andrusovo was signed, marking a peace treaty between Poland and Russia, ending the Russo-Polish War over territories in modern-day Ukraine and Belarus. In the year 1895, the game of volleyball, initially called Mintonet, was invented by William G. Morgan. In the year 1897, the British Expedition Force invaded the Benin city, ending the Nigerian Kingdom of Benin. In the year 1900, the famous tennis tournament, the Davis Cup, was established by Dwight Davis. Devendra.
Ji. 1971 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चांद पर भेजा गया अपोलो 14 अंतरिक्षयान अपनी कार्य अवधि पूरी कर धरती पर वापस लौटा था. 1992 में पर्यटकों को लेकर सेनेगल की राजधानी डकार जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. रात के अंधेरे में पायलट ने गंतव्य से कुछ पहले एक होटल के बगीचे में लगी कतारबद्ध लाइटों को विमान तल की हवाई पट्टी समझकर उस पर विमान उतार दिया था. विमान में सवार 59 लोगों में से 31 की मौत हो गई थी.
In the year 1996, German physicist Peter Armbruster and his team of scientists synthesized chemical element 112, a heavy transuranium element that was later named coppercinium.
जी और वर्ष 2010 में हैती में बहुत ही भीषण भूकंप आया था. ये भूकंप इतना भीषण था कि इसकी त्रासदी में लगभग 230,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. ये आंकड़े आधिकारिक बयान में जारी किए गए थे. और अब याद करते हैं, स्मरण करते हैं उन महान विभूतियों को जो जिनके कार्य, जिनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं. इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे को. मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाले बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था. उन्होंने हजारों कुष्ठ रोगियों को गरिमा के साथ जीवन जीने की आशा दी. बेघर और विस्थापित आदिवासियों को आशा की किरण दिखाई. बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए सबसे पहले 11 साप्ताहिक औषधालयों की स्थापना की, फिर आनंदवन नामक संस्था शुरू की. बाबा जी ने 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 1988 में असम से गुजरात तक दो बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया. बाबा आमटे को मैग्सेसे, पद्मश्री, पद्म विभूषण, बिरला पुरस्कार, मानवीय हक पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
जी एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्योदोर मिखाइलोविच दस्तोयेवस्की. He passed away on this day in 1881. The Russian novelist, short story writer, essayist and journalist. Numerous literary critics regard him as one of the greatest novelists of all world literature, as many of his works are considered highly influential masterpieces. Dostoevsky's literary works explore the human condition in the troubled political, social and spiritual atmospheres of the 19th century Russia and engage with a variety of philosophical and religious themes. His most acclaimed novels include Crime and Punishment, published in 1866, The Idiot, 1869, Demons, The Adolescent, and The Brothers Karamazov, which was published in 1880. His 1864 novella, Notes from Underground, is considered to be one of the first works of existentialist literature. He eventually became one of the most widely read and highly regarded Russian writers. Dostoevsky's body of work consists of 13 novels, 3 novellas, 17 short stories and numerous other works. His writings were widely read both within and beyond his native Russia and influenced equally number great number of later writers.
Ji, aur ek aur suprasiddh upanyaskar, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक का स्मरण कर रहे हैं, जिनका नाम है गिरिराज किशोर। हिंदी जगत में इनका बड़ा नाम है और उन्हें एक कहानीकार के रूप में बड़ी ख्याति मिली। गिरिराज किशोर की समसामयिक विषयों पर विचारोत्तेजक निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार प्रकाशित होते रहे। उन्होंने बालकों के लिए भी अनेक लेख लिखे। इनका उपन्यास ढाई घर काफी लोकप्रिय हुआ था। वर्ष 1991 में प्रकाशित इस रचना को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिरिराज किशोर द्वारा उपन्यास जो लिखा गया था, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, उसका नाम है पहला गिरमिटिया। ये उपन्यास महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित था। इस उपन्यास ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई।
एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आर्मांडो एंटोनी चिक कोरिया। ही पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2021। द अमेरिकन जैज पियानिस्ट, कंपोजर, बैंड लीडर, ओकेशनल परकशनिस्ट। हिज कंपोजिशन स्पेन 500 माइल्स हाई, ला फिएस्टा, आर्मांडोज रुम्बा एंड विंडोज आर वाइडली कंसिडर्ड जैज स्टैंडर्ड्स। एज अ मेंबर ऑफ माइल्स डेविस बैंड इन द लेट 1960s, ही पार्टिसिपेटेड इन द बर्थ ऑफ जैज फ्यूजन। इन द 1970s, ही फॉर्म्ड रिटर्न टू फॉर एवर अलॉन्ग विद मैकॉय टर्नर एंड हर्बी हैंकॉक विद कीथ जेरेट। कोरिया इज कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द फॉरमोस्ट पियानिस्ट ऑफ पोस्ट John Coltrane era. Coria continued to collaborate frequently with while exploring different musical styles throughout 1980s and 90s. As of January 2025, he has won 28 Grammy Awards and nominated 72 times for the award.
और अब बात हिंदी फिल्मों की ख्याति प्राप्त और अपने समय की सुंदर अभिनेत्रियों में शुमार फरहत एजेकल नादिरा उर्फ नादिरा की। फिल्मी पर्दे पर नादिरा एक सशक्त किरदार निभाते हुए नजर आती हैं। 60 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली नादिरा ने दिलीप कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी, राजकुमार और अमिताभ बच्चन सहित कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। लाजवाब खूबसूरती और शाहाना अंदाज की शख्सियत के बावजूद उन्होंने उस दौर में खलनायिका की भूमिकाओं को चुना। 9 फरवरी 2006 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाली अभिनेत्री नादिरा की मुख्य फिल्मों की अगर हम बात करें तो आन, श्री 420, दिल अपना और प्रीत पराई, पाकिजा, जूली, सागर, तमन्ना, इंसाफ का मंदिर, पॉकेट मार, तलाश और धर्मात्मा शामिल है। एक गाना उन पर फिल्माया गया, ही सुनते हैं।
Today is the birthday of American singer-songwriter, musician Carole King Klein, one of the most successful songwriters in American history. She wrote and co-wrote 118 pop hits, appearing in Billboard Hot 100 over the latter half of 20th century. King also wrote 61 hits that charted in the UK, making her the most successful female songwriter on the UK singles charts between 1962 and 2005. I'm playing To Be a Friend.
Down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right.
She has been inducted twice into the Rock and Roll Hall of Fame as a performer and songwriter. She's the recipient of 2013 Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song, the first woman to be so honored. She's also the 2015 Kennedy Center honoree.
Ji, aur ab baat Hindi cine kalakar Rajiv Kapoor ki. Film abhineta, nirmata aur nirdeshak Raj Kapoor ke sabse chote bete Rajiv Kapoor ne 1983 में रिलीज हुई फिल्म एक जान है हमसे डेब्यू किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1985 में रिलीज हुई राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। 25 अगस्त 1962 को जन्मे राजीव कपूर का निधन मात्र 58 वर्ष की उम्र में 9 फरवरी 2021 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। आइए सुनते हैं राजीव कपूर पर फिल्माया गया ये गाना।
मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
और इस खूबसूरत गाने के साथ ही हम आप सभी से चाहेंगे अनुमति आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम यही समाप्त करने की, लेकिन आप लगातार बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar. Namaskar.